नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। चाय बोर्ड ने अगले साल की पहली छमाही में बेहतर फसल के लिए उत्तर भारत में सर्दियों में चाय उत्पादक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। बोर्ड के आदेश के अनुसार दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सभी चाय कारखानों के लिए हरी पत्तियां तोड़ने या लेने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर तय की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के द्वार तथा तराई क्षेत्र और बिहार के लिए तारीख 23 दिसंबर है। दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कारखानों में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तारीख 13 दिसंबर जबकि तराई, द्वार और बिहार के लिए तारीख 26 दिसंबर है। आदेश में कहा गया है कि दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए छटाई, पैकिंग और पैक की गई चाय को अधिसूचित भंडारण क्षेत्रों में बिल मार्किंग के साथ ले जाने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर होगी। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों को लक्षित करते हुए मध्यवर्ती वाणिज्यिक वाहन खंड में इकोमैट स्टार 1915 ट्रक पेश किया। कंपनी ने बुधवार को बताया कि 18.49 टन GVW वाला ये ट्रक ई वाणिज्य, पार्सल डिलीवरी, ताजा उपज के परिवहन सहित अन्य क्षेत्रों के ग्राहकों की लॉजिस्टिक मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा, अशोक लीलैंड ने लगातार अनूठे तथा नवीन उत्पादों को पेश करके ICV खंड में तेजी से विस्तार कर रहा है। हमें 18.49 टन के GVW के साथ इकोमैट स्टार 1915 ट्रक को पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो 150 HP H4 इंजन से लैस है। ये लंबी दूरी तय करने के लिए उपयुक्त है। ब्रिटेन स्थित कैमेलिया PLC का एक हिस्सा चाय उत्पादक कंपनी गुडरिक ग्रुप लिमिटेड चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुनाफे में लौटने की उम्मीद कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं CEO अतुल अस्थाना ने कहा कि कंपनी को इस साल चाय उत्पादन में लगभग 3.2 करोड़ किलोग्राम की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे उसकी तीन अनुषंगी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में चाय की कम कीमतों के कारण राजस्व में गिरावट की आशंका चिंता का विषय बनी है। अस्थाना ने PTI भाषा को दिए साक्षात् कार में कहा, गुडरिक और उसकी अनुषंगी कंपनियां मिलकर सालाना करीब 3 करोड़ किलोग्राम का उत्पादन करती हैं। इस वर्ष स्थिर वृद्धि होगी क्योंकि उत्पादन 3.2 करोड़ किलोग्राम होने की उम्मीद है। पूरे समूह का राजस्व पिछले साल करीब 1200 करोड़ रुपए था, लेकिन चालू वित्त वर्ष में कीमतों में कम होने के कारण कारोबार में गिरावट देखी जा सकती है। फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डे सेल के पहले दिन गैर महानगरों का दबदबा रहा। पहले दिन की सेल में 60% ऑर्डर गैर महानगरों या छोटे शहर से आए। सबसे अधिक ऑर्डर मोबाइल फोन उपकरणों और जीवन शैली उत्पादों के लिए थे। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। फ्लिपकार्ट ने बयान में कहा कि बाजार में लाइफस्टाइल उत्पाद विक्रेताओं ने त्योहार से पहले की अवधि की तुलना में किए गए ऑर्डर की संख्या में 10 गुना वृद्धि देखी। इसके बाद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्थान रहा। 7 अक्टूबर के बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया, 60% से अधिक ऑर्डर पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से दिए गए थे। 7 अक्टूबर को शुरू हुई सेल के पहले दिन कंपनी के पोर्टल पर 9.1 करोड़ लोग आए। फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा खरीदार बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद से आए। इसके बाद मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और गुरुग्राम का स्थान रहा। किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइंस, स्पाइसजेट और विमानों को किराए पर मुहैया कराने वाली कंपनी सेलेस्टियल एविएशन के बीच मामले का निपटारा करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। ये जानकारी मंगलवार को NCLT को दी गई। NCLT में मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सेलेस्टियल एविएशन सर्विसेज लिमिटेड ने स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अर्जी NCLT में लगाई है। इस अर्जी में सुनवाई के दौरान ये प्रकरण सामने आया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की गई है। मीडिया में आए खबरों के मुताबिक सेलेस्टियल एविएशन ने 9 विमानों के लिए $2.99 करोड़ के भुगतान में चूक का दावा किया। उसके पहले भी 4 अन्य विमान प्रदाता कंपनियां स्पाइसजेट के खिलाफ अदालत का रुख कर चुकी हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी 23-24 अक्टूबर को जिनेवा में बैठक करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान वे अगले साल फरवरी में आबू धाबी में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने और विशिष्ट समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने मंगलवार को इस बैठक के विवरण पर चर्चा की। अधिकारी ने कहा, WTO के सभी सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारी जरूरी राजनीतिक प्रोत्साहन देने और MC13 के काम के आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में 26 से 29 फरवरी तक होना है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।